श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने के लिए हम बच्चों को भगवान ने चुना। साधारण बच्चे, गरीब बच्चे, अनपढ़ बच्चे, भोले भाले बच्चे, भोली भाली माताएं, सबको बाबा ने चुन लिया और एक सतयुगी गुलदस्ता बनाने के लिए, सतयुग बनाने के लिए हम बच्चों को भगवान ने चुना। तो कितना ऊंचा हमारा भाग्य कहें कि ऐसा भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता। हम सभी पद्मा पदम भाग्यवान, कोटों में कोऊ और कोऊ में भी कोऊ विशेष आत्माएं हैं, जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और मुरली के द्वारा सभी प्रकार की शिक्षाएं हमें देते हैं। बाबा के फरमान मुरली से मिलते, बाबा की शिक्षाएं मुरली के द्वारा मिलती, श्रीमत मुरली के द्वारा मिलती, क्या करना है क्या नहीं करना है, दिन भर की दिनचर्या किस प्रकार की रखनी है, सभी प्रकार की बातें बाबा की मुरली के द्वारा हमें मिल जाती है। तो मुरली किस प्रकार से सुननी चाहिए? सबसे पहली बात कि स्कूल में पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं तो देखिए, दुनिया में भी जिस प्रकार से स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो अपनी यूनिफॉर्म है ना, और समय पर पढ़ने के लिए जाते हैं। समय के पहले, पढ़ाई के पहले स्कूल में प्रार्थना भी होती है, तो उसमें भी अटेंड होना जरूरी समझते हैं। उसी प्रकार से जो अच्छे स्टूडेंट होंगे बाबा के बच्चे, वो अपना सारा कार्य समय पर समाप्त करके मुरली में समय पर पहुंच जाते हैं। 6:30 बजे से योग होता है पहले, और योग के द्वारा हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती है। बाबा कहते, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रुकता है। उसी प्रकार से पहले बाबा योग के द्वारा हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं। बुद्धि स्वच्छ होगी तो उसमें ज्ञान के रत्नों की धारणा सहज होगी। बाबा कहते, लाख लाख के एक एक रत्न है। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है कि लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए, ऐसा देवता बन जाए, तो ये साधारण पढ़ाई नहीं। तो उस पढ़ाई का भी कितना अटेंशन रखते हैं, लौकिक का भी, तो इस पढ़ाई में हमें टीचर का कितना सम्मान, रिगार्ड होना चाहिए कि समय से पहले आकर ज्ञान की मुरली जहां पर भी सुनते हैं, चाहे सेंटर पर या मधुबन में। लेकिन अभी जनवरी मास में आप सभी को विशेष चांस मिला, पुराने साल में आए और नया साल, तो पूरा दूसरा साल भी आपके लिए है ना। तो जनवरी का महीना है, विशेष तपस्या का महीना है, और तपस्या के महीने में ब्रह्मा बाबा का विशेष गायन, फॉलो फादर करने की बातें, जहां तहां भी हम जाते हैं तो बाबा की शिक्षाएं, चाहे मधुबन में है, माउंट आबू में, कहीं पर भी है, लेकिन मुख्य यादगार स्थान, चरित्र भूमि, गायन भूमि, तपस्या की भूमि, ये आबू पर्वत है, मधुबन है। सारे कॉम्प्लेक्स मिलाकर सभी को हम मधुबन कहते हैं। तो मधुबन में आपको बट्टी का विशेष चांस मिला। जिन्होंने भी चांस लिया वो अपने ड्रामा में उन्होंने कल्प कल्प के लिए रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसी पढ़ाई की चर्चा हम कर रहे हैं, तो पढ़ाई के बारे में बाबा किस किस प्रकार से हमें पढ़ाते हैं, रमणीक पढ़ाई पढ़ाते हैं कि किसी भी प्रकार की पढ़ाई में बोरियत न हो। कई बार मुरली को याद रखने के लिए कुछ कुछ बातें, अच्छी बातें पॉइंट्स के रूप में नोट कर लेनी होती है, कई शब्दों को नोट कर लेना होता है, कुछ इंग्लिश के शब्द आते हैं उनको नोट कर लेते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बातें नोट कर लें जो दिन भर में हमारी बुद्धि में ज्ञान के रत्नों का चिंतन चलता रहे। नहीं तो फिर क्या होता है कि हम सभी बाबा के बच्चे बुराइयों पर जीत पा रहे हैं, तो उनको जीतने के लिए, माया जीत बनने के लिए माया के साथ में हमारी युद्ध भी चलती है। तो युद्ध किस प्रकार से होती है कि पांच विकार बड़े रूप में और छोटे रूप में अनेक प्रकार के उसके बाल बच्चे, तो अनेक प्रकार की बातें, आलस, अलबेलापन, नींद आना, सुस्ती आना, ये भी सब माया के अंतर्गत हैं। तो इन पर भी जीत पानी है कि मुरली के समय या योग के समय बैठे हुए हम निद्रा जीत कैसे बने, आलस को कैसे जीत प्राप्त करें। नहीं तो क्या होता है, कई बार मुरली चलते चलते भी माया अपना काम कर लेती है, आंखें बंद हो जाती है, सुस्ती आने लगती है, खाने का असर भी कुछ होता है। रात को अगर भारी भोजन, किसी प्रकार का गरिष्ठ भोजन अगर ज्यादा कर लिया हो तो भी सुस्ती आने की संभावना रहती है। इसलिए बाबा मम्मा की डाइट की भी कई बार चर्चा होती है कि बाबा और मम्मा तपस्या करने वालों को बताते भी थे और वो स्वयं क्या स्वीकार करते थे कि एक छोटी चपाती और किस प्रकार का, दादियां सुनाती है कई बार अनुभव। तो कहने का मतलब है निद्रा जीत भी बनना है कि मुरली सुनते हुए अलर्ट एक्टिव होकर के बैठना है, सीधे होकर के बैठना है। बाबा ने हम बच्चों को बिठाने के लिए बहुत अच्छे सोफे का इंतजाम किया है, लेकिन वो सोफा कहीं हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप न बने, इसलिए अपने ऊपर अटेंशन ध्यान देना है कि किस प्रकार से अलर्ट होकर, सीधे होकर, आंखें खुली रखते हुए, टीचर का सम्मान रखते हुए मुरली सुननी है ना। नहीं तो फिर क्या होता है, थोड़ी भी सुस्ती आती है तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को सुस्ती आने लगती है। फिर है कि बार बार में अपने आप को भ्रकुटी के बीच में स्थित करना है। देही अभिमानी बाबा बार बार हर मुरली में बोलते हैं, सोल कॉन्शियस, देही अभिमानी, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो। तो ये बातें भी बार बार में अपने आप को भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ स्टार देखना है। और मुरली की बातों की लेन देन दूसरों से करना कि क्लास के बाहर फिर हम जाते हैं और यहीं पर सुन करके, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आगे जाकर के मुरली की एक दो पॉइंट भी मुश्किल से हमारी झोली में रह जाती है। पूछने पर अचानक किसी ने पूछा तो मुरली की बात जैसे कि गुम हो जाती है, तो वो क्यों होती है। उसके लिए हम अपना स्वयं का विचार सागर मंथन करें, बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट को दोहराते रहें और एक दूसरे से लेन देन अवश्य करें, वरना मुरली की पॉइंट का लेन देन नहीं करने से वो अपनी नहीं बनती और वो पॉइंट्स भूल जाती है। क्योंकि माया से हमारी युद्ध है, इसलिए बाबा क्या सिखाते कि देखो बच्चों, गाय में भी कितना अक्ल होता है कि वो चारा खाने के बाद में क्या करती है, उगारती रहती है, जुगाली करती है। तो वो उगारती रहती है, उसी प्रकार से बाबा की मुरली की बातें फिर बार बार में एकांत में बैठकर, शांत में बैठकर, कहीं पर भी बैठकर वो बातों का अंदर चिंतन चलता रहे। अधिक आवाज में आने का वैसे ही जनवरी मास नहीं है, मौन में रहते हैं, जितना मौन में रहते हैं उतनी हमारी कमाई होती जाती है, आत्मा भरपूर होती जाती है और बाबा की शिक्षाएं प्रैक्टिकल में जीवन में धारण होने लगती है। वरना क्या होता है, सुना एक कान से और दूसरे कान से निकल गया, तो फिर मुरली दिन भर में अधिक से अधिक बार हमको एक दूसरों को याद दिलाना, और मुरली का मनन चिंतन करना, तब हमारी बुद्धि में ये ज्ञान का खजाना रुकेगा, क्योंकि एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अगर एक रत्न भी मिस होता है तो आप समझो कि कितनी बड़ी कमाई से हम वंचित हो जाते हैं। तो जैसे कि रोज बाबा मुरली सुनाते हैं, देखो मुरली में कितनी किस प्रकार की बातें आती है कि उनको याद रखने से भी हमको मुरली याद रह सकती है। कई बार कईयों का प्रश्न होता है कि मुरली याद नहीं रहती है, तो याद रखने के लिए जैसे बाबा कई बार नदियां है, सागर है, तालाब है, झरने हैं, या कई बार पौधों के ऊपर, कई बार फूलों के ऊपर, गुलाब का फूल, चंपा का फूल है ना, अक का फूल, अनेक प्रकार की बातें बताते, कई बार सूरज चांद सितारे इनके ऊपर मुरली चलती, तो कई बार किन्हीं सेवाधारियों को याद कर लेते, दादियों को याद करते, बड़ी बहनों को याद कर लेते, कौन कौन अच्छी सेवाएं कर रहे हैं उनका नाम लेते, तो कोई न कोई प्रकार की बातों को अपने दिमाग में भर देना होता है और उनको फिर वापस उगारना, वापस याद करना कि बाबा ने आज इसको क्यों याद किया। कई बार बाबा देखो नदियों के ऊपर मुरली चलती है, नदियां झरने तालाब डुबके इनके ऊपर बाबा मुरली की बातें बताते, कई बार कछुए का, सांप का, भ्रमरी का ऐसे उदाहरण देते, तो वो अलग प्रकार की बातें हो जाती है, रमणीक बातें, उनके द्वारा भी कैसे बाबा हमें ज्ञान की बातें पढ़ाते हैं। तो हर लौकिक बात को करते हुए उसमें अलौकिकता समाई हो, अलौकिकता की तरफ उस बात को मोड़े, तो फिर वो बात सहज हमें याद रहेगी। तो आज की मुरली में बाबा ने आपको जो भी याद हो तो आप भी शेयर करना, और हम एक एक को पूछेंगे भी। बाबा ने मुरली में बताया आज ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, है ना? तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, इसका राज बाबा ने बताया कि कैसे एक दूसरे की नाभि से निकलते हैं, है? तो ये बात बाबा ने कहा कि सबको सिद्ध करके बतानी है, सबको समझानी है। तो किस प्रकार से बाबा के 84 जन्मों की, हम सभी आत्माओं के 84 जन्मों की कहानी ये सारी मुरली है, कि लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी कहें या हम ब्राह्मणों के 84 जन्मों की कहानी कहें, तो ये मुरली में बाबा हर रोज बताते हैं। तो हमारी ही कहानी है, एक कहानी के रूप में हम मुरली की बातों को ले लेते हैं कि एक स्टोरी है 84 जन्मों की, 5000 वर्षों की। तो इस कहानी में आज बाबा ने क्या क्या बताया, तो ये राज सभी को समझाने के लिए बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की बातें फिर बताई। तो आज बाबा की मुरली का प्रश्न क्या था कि कौन सा गुह्य राज जो सबको समझाना है, तो गुह्य राज कौन सा है, गुह्य राज में क्या बात बताई बाबा ने, बाबा ने बताया बड़ी मां के लिए कि ब्रह्मा बाबा किस प्रकार से हमारी बड़ी मां है। क्योंकि थोड़े दिन पहले भी एक मुरली चली थी तो शिव बाबा ने कहा कि मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा को अपना बच्चा बनाता हूं, ब्रह्मा को अपनी पत्नी भी बनाता हूं, वन्नी भी बनाता हूं, और इनके द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। तो आज उसी प्रकार से बाबा ने बताया कि ब्रह्मा को बाबा सबसे पहले एडॉप्ट करते और उनके द्वारा हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रचना करते, ब्राह्मणों को रचते हैं। और फिर बाबा ने बताया है कि मम्मा को, जो मम्मा जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा बाबा की बेटी है, मम्मा भी, मम्मा को फिर बाबा मुकरर करते हैं ब्राह्मणों को, परिवार को संभालने के लिए। लेकिन वास्तव में बड़ी माँ, जिनके लिए त्वमेव मातास्य पिता भी कहते हैं, वो कौन है, ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, बाबा ने कहा कि जिनका नाम मशहूर है और माताओं का गायन भी है ना, माताओं के लिए क्या गायन है? ज्ञान। ज्ञान का कलश माताओं को दिया गया है, तो ज्ञान का कलश माताओं को दिया। बाबा ने कहा कि विश्व शांति की बात, तो जैसे कहा ना कि ये बात सबको समझानी है, तो ये बात समझा करके कौन सी बात को सिद्ध करना है, विश्व में शांति स्थापन कौन कर सकता है, तो उसके लिए फिर बाबा ने कहा कि माताओं को मुकरर किया है। बाबा ने माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखा है। तो माताएं सभी का, वैसे भी बाबा कहते घर की पालन पोषण सभी करने वाली, बच्चों की पालना करने वाली कौन होती है? माताएं। तो वंदे मातरम का गायन भी है ना, तो माताओं को बाबा किस प्रकार से, देखो दुनिया में तो लोगों ने, साधु संत महात्माओं ने माताओं के बारे में क्या क्या कहा, लेकिन बाबा शिव शक्तियों माताओं बहनों के द्वारा कितना बड़ा कार्य भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने का कर रहे हैं, जो किसी को भी पता नहीं है। तो किस प्रकार से ब्रह्मा बाबा के 84 जन्म, किस प्रकार से बाबा विष्णु बनते हैं, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी और नारायण है ना, लक्ष्मी नारायण के द्वारा सतयुग में हम बच्चों की सभी की पालना होती है। और अभी बाबा क्या कर रहे हैं, हमारी पालना मम्मा बाबा दोनों सभी यज्ञ के रक्षक, वो हमारी पालना संगम युग पर कर रहे। बाबा ने कहा संगम युग का किसी को भी पता नहीं है कि ये संगम युग कौन सा है और संगम पर क्या होता है, ये किसी को भी मालूम नहीं, तो हम बच्चों को ही केवल मालूम है संगम युग के बारे में। और बाबा ने क्या बताया बताओ, अभी बाबा ने अपने नाम कौन से बताए, आज तीन नाम बाबा ने अपने मुरली शुरू होते ही बताए, कौन कौन से? बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, बिगड़ी को बनाने वाला, सबसे पहला नाम आया बिगड़ी को बनाने वाला, दूसरा कि भैया तीसरे नंबर पे, दूसरा भोलानाथ, भोलानाथ बाबा बिगड़ी को बनाने वाला, उन्हीं के लिए फिर बाबा ने कहा कि बाबा गॉड फादर भी है ना, गॉड फादर का अक्षर कई दूसरे लोग भी यूज करते हैं, तो इसमें क्लियर हो जाता है कि फादर कौन है, पिता कौन है, सभी आत्माओं का पिता वो हमारा कौन, गॉड शिव बाबा, गॉड फादर, इसी में तो क्लियर हो गया परम पिता कौन। तो परम पिता सभी धर्म की आत्माओं का पिता, सभी आत्माओं का पिता वो है शिव बाबा। और बोलो क्या आगे बाबा ने बताया, ब्लास्ट में पहुंच गए उसके पहले मुरली की बात है, हाँ बिल्कुल, मम्मा सरस्वती, बाबा ने कहा जगदम्बा सरस्वती, जो यहाँ पर मम्मा सरस्वती है वो सतयुग में राधा बनती है, राधे और कृष्ण दोनों के घराने बाबा ने कहा अलग अलग है, दोनों अलग अलग राजाई के हैं, राधा अलग घराने की है, कृष्ण अलग राजाई के हैं, और ये तो हम जानते हैं कि स्वयंवर के बाद में फिर दोनों का नाम बदली होता है, गद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी शुरू होती है। अच्छा और बाबा ने क्या बताया, जिन जिन को याद है बताओ, सुनाएंगे तो आपका मुख खुलेगा तो याद भी रहेगी वो बात। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके बारे में बाबा ने बताया कि शिव बाबा है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, लेकिन शिव बाबा को ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र से उड़ा दिया है, त्रिमूर्ति के चित्र से। बाबा ने कोर्ट ऑफ आर्म्स की बात बताई कि भारत सरकार का कोर्ट ऑफ आर्म्स क्या है, वहां पर कौन सा पिक्चर बना दिया, जानवरों का पिक्चर दे दिया, अब बाबा ने कहा कि जानवरों से इसकी क्या तुलना है, है ना, किसको समझाएंगे, भगवान आकर पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे, मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देंगे, तो जानवरों का देकर और नीचे नाम लिखना सत्यमेव जयते, तो सत्य की विजय होती है इसका मतलब, तो सत्य की विजय तो जानवरों से क्या अर्थ है उसका, है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, तो रियल में जो हमारा है बाबा ने कहा त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर से भी शिव को उड़ा दिया है, तो ये भी बाबा ने राज बताया। और क्या बताया, यही तो चर्चा कर रहे हैं अभी, यही तो बोल रहे हैं इतनी देर से हैं। तो जानवरों का चित्र लगा दिया और रॉन्ग किया, यही तो बात बोली अभी। और दूसरा, हाँ, गॉड फादर कहने से निराकार की तरफ बुद्धि चली जाती है, ये बात क्लियर हुई कि सर्वात्माओं का पिता परम पिता शिव बाबा है, निराकार है, न कि साकारी कोई भी। हाँ, गीता का भगवान शिव है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं। बाबा कई बारी इस बात को उठाते हैं कि इस बात को बच्चों को उठाना चाहिए कि गीता का भगवान कौन, और इस बात को सिद्ध करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर आप अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, दिन भर में कोई ना कोई पॉइंट्स गीता के भगवान के बारे में जो आप जानते हैं, जो आपके दिमाग में नई पॉइंट आती है, तो एक लिखने के लिए आज का एक टॉपिक बना लें कि आधा घंटा इसके लिए समय दें और कुछ पॉइंट्स अलग अलग प्रकार की आप नोट करें कि भगवान किसको कहें। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता, श्री कृष्ण गीता का ज्ञान नहीं सुना सकते, श्री कृष्ण जैसे बच्चे गीता के ज्ञान के द्वारा पैदा होते हैं। बाबा कहते विष्णु जैसे बच्चे, विष्णु माना लक्ष्मी नारायण, तो गीता के ज्ञान के द्वारा ऐसे बच्चे पैदा हुए। गीता ज्ञान छोटा बच्चा श्री कृष्ण कैसे गीता ज्ञान देगा। और बाबा ने मुरली में भी बताया कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक परमात्मा को याद करना है, तो देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है तो श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो फिर किस प्रकार से ज्ञान देंगे, उनको परमात्मा कैसे कह सकते हैं, उन्होंने तो माँ बाप के द्वारा पालना भी ली है। तो अनेक प्रकार की और भी बहुत सारी बातें निकलेगी, तो अपना अपना ऐसा चिंतन का टॉपिक बनाएं और कुछ नोट करें। और कोई नई बात, एकोंकार निराकार, बाबा ने गुरु नानक जी की बातें भी बताई कि इनकी बातें मिलती जुलती है बाबा के ज्ञान से, क्योंकि उनमें भी जो भी आत्माएं आती है, कल्प में जो भी आत्माएं सीधा धर्म पिताएं भी कोई उतरते हैं तो सतो प्रधान स्टेज होती है उनकी, तो परमात्मा के बारे में जो कुछ बातें वो भी बोलते हैं तो कुछ अच्छी बातें भी होती है। तो गुरु नानक जी की बातें जो भी बताई, गुरु गोविंद सिंह का बाबा ने नाम लिया इस धर्म सिख धर्म के रचना करने वाले, तो इनका बाबा ने नाम बताया। तो ये सारी बातें, हाँ, बाबा के ज्ञान से भी कई चीजें कॉपी करते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर भी जो एक का विशेष महत्व बताया गया है तो वो बहुत सारी अच्छी बातें बताई है, तो बाबा से मिलती जुलती बातें हैं। और हाँ, राम राज में एक धर्म होगा, एक भाषा, एक राज्य, एक मत, एक धर्म, कोई भी दूसरा धर्म नहीं, कोई वहां पर रावण की प्रवेशता नहीं, पांच विकार नहीं, कुछ भी नहीं, सब श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं हैं। और बाबा ने कहा गंगा पतित पावनी नहीं हो सकती है। पतित पावन कौन, सर्व का सदगति दाता परम पिता शिव परमात्मा, और ज्ञान गंगाएं जो ज्ञान देने वाली, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान देने वाली पतित पावनी नदियां ज्ञान गंगाएं, न कि पानी की नदियां। और जी, हाँ, एक बात विशेष बात पवित्रता से संबंधित, देवताएं जब वाम मार्ग में गिरती कला में जाते हैं तो फिर सन्यासी भारत को थमाते हैं अपनी पवित्रता के बल से, ब्रह्मचर्य के बल से। हालांकि बाबा ने एक मुरली में थोड़े दिन पहले भी बताया कि उनकी पवित्रता को संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे, अधूरी पवित्रता कहेंगे, कि विकार से ही तो सभी की पैदाइश तो सभी की विकार से हुई ना, इसलिए देवताओं की पवित्रता में और ये पवित्रता में बहुत सारा अंतर है। और बाबा धोबी, हाँ बिल्कुल, बाबा ने कहा मूत पलीती कपड़ धोए, तो हम सभी के पुराने वस्त्रों को आत्माओं की बाबा धुलाई कर रहे हैं, जिन आत्माओं में मेल चढ़ गई पांच विकारों की, उनको बाबा किस प्रकार का देवी देवता में बना रहे हैं। तो बिल्कुल बाबा का धोबी का रूप भी था। और बाबा ने वरदान में क्या बताया, कौन सी स्मृति, सब कुछ बाप के हवाले कर डबल लाइट रहने वाले न्यारे प्यारे भव है ना। तो अपना सब कुछ बाबा ने कहा, तन मन धन सब कुछ बाबा के हवाले, जब तन ही भगवान के हवाले हो गया तो बाकी क्या रह गया है ना, सब कुछ उसके हवाले हो गया। तो अपना दिन भर में ऐसा चेकिंग भी करें कि हमने कहते तो आए भक्ति मार्ग में भी, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, लेकिन वास्तविकता है कि तन बाबा को अर्पण कर दिया। अब अगर ये तन बीमार होता है, अगर ये तन को कुछ होता है, तो सबसे पहले बाबा याद आता है कि सुप्रीम सर्जन कौन है, शिव बाबा है, वो हमारा इलाज करेगा, सबसे पहले बाबा की याद आती है। तो इसी प्रकार से सारे संबंधों को हम लेकर के चेक कर सकते हैं, मन भी हमारा बुद्धियों कहीं और तो नहीं जाता बाबा की याद के सिवाय, कोई भी कहीं विशेष जरूरी हो गया किसी भी प्रकार के संबंध की बात, तो हम संबंधी को याद करते हैं पहले या बाबा को याद करते हैं, कि बाबा हमारा सर्व संबंधी है, सब संबंधों का रस एक बाप से लेना है, तभी तो अंत मते सो गते होगी है ना, अंत में एक बाप की याद रहे, दूसरा कोई याद ना आए। अच्छा, और मनुष्य से देवता बना रहे हैं, बिल्कुल, और हाँ स्लोगन की बात, मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है ना, लकीर के फकीर नहीं बनना है। सीता ने क्या किया, एक लकीर के अंदर से बाहर निकली, एक कदम बाहर बढ़ाया और रावण की हो गई। उसी प्रकार से ये बाबा हमें बता रहे हैं कि मर्यादा की लकीर, मर्यादाएं अनेक प्रकार की मिली हुई है, आंखों द्वारा देखने की, कानों से सुनने की, मुख द्वारा बोलने की, संकल्प में भी अनेक प्रकार की मर्यादाएं मिली हुई है। तो मर्यादा की लकीर से हम कहीं बाहर तो नहीं चले जाते हैं, अगर बाहर गए तो क्या होगा, फिर रावण पर जिस पर हम जीत प्राप्त कर रहे हैं वही रावण अपनी कैद में वापस फंसा लेगा, वो कोई ना कोई प्रकार का लालच देगा, कोई ना कोई प्रकार की ऐसी सुनहरी बात सामने रखेगा और आत्मा रूपी सीता को अपनी कैद में, इतना 63 जन्म तो रहे। अब बाबा ने हमको अपना साथ दिया है कि स्वयं सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान हमारा साथी है, तो दिन भर में कोई ना कोई प्रकार का संबंध लेकर के बाबा की याद में रहना है, अपने आप को अकेला नहीं रखना है ना। शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड हूँ, शिव बाबा मेरा फ्रेंड है, सखा है, बाप टीचर सतगुरु, ये भी बाबा ने जैसे बात बताई लास्ट में, फॉलो फादर की बात भी आई थी कि फॉलो ब्रह्मा बाबा को, कदम पर कदम ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है। बाबा का पहला मुरब्बी बच्चा जिन्होंने कर्मातीत संपूर्ण फरिश्ता बनकर दिखाया, तो हमारे सामने आदर्श उदाहरण मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, ओम शांति। चलो बट्टी वालों के लिए दो लाइनें एक कविता की, बट्टी करने वालों पर, बहन जी ने कहा कविताएं लिखते हैं तो दो लाइन आपके लिए, बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, आत्मा सच्चा सोना बनती भस्म होती खाद, स्वयं की राजा बनती और हो जाती आजाद। बोझ सभी हल्के होते, लाइट का मिलता ताज, बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। पांच विकारों की बुझती, 63 जन्मों की आग, अलबेलेपन की नींद से होते सभी सुजाग। बट्टी में पकने से मीठी बन जाती आवाज, बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। योग बट्टी से होता है। ओम शांति।